सुंदर प्रश्न है आपका। अंतिम समय जब जब मरीज आता है ना, तो अधिकतर वो आईसीयू में होता है मोस्टली। ऐसा नहीं कि वार्ड में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जो लास्ट स्टेज का मरीज है, लास्ट स्टेज तक आने आते आते वो आईसीयू में पहुंच जाता है। और एक स्थिति ऐसी होती है कि वो अभी डॉक्टर बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा इसके अंदर, अभी जाएंगे ये 2 घंटे के बाद में। और बहुत लोगों को मिलना होता है, उनको रिश्तेदार बाहर इंतजार कर रहे हैं, हमको जाना है हमको जाना है। और आपका आईसीयू का नियम है कि इतनी भीड़ आईसीयू में नहीं कर सकते हैं, उसको इन्फेक्शन होगा मरीज को, बाकी लोगों को तकलीफ होगी, तो शांति भंग हो जाएगी, पूरा डेकोरेशन खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उनसे क्या करते हैं, DNR साइन करके लेते हैं, डू नॉट रिससिटेट। आम हॉस्पिटल में क्या होता है, मरीज लास्ट तक उसको इंट्राकार्डियक एड्रेनालिन, कार्डियक मसाज, CPR, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, वेंटिलेटर, ये सारे खतरनाक काम करते रहते हैं, DC शॉक, वो सब देते रहते हैं। लेकिन अगर मरीज को पता चला कि ये सब करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, आप खाली साइन कर दो कि हमारे लिए मंजूर है, तो हम लोग उनको सारी ट्यूब निकाल देते हैं और एक स्पेशल रूम में शिफ्ट करते हैं 2 घंटे के लिए, क्यों ना हो, ताकि उनके जितने रिश्तेदार बाहर खड़े हैं सब आ जाओ। रूम को बंद कर देते हैं, अंदर 25 लोग बैठे हुए हैं, हमारे स्पेशल केयर के स्टाफ बैठे हुए हैं, वो तुलसी का पौधा लेके आते हैं, भगवान का चित्रपट लेके आते हैं, भगवान का कीर्तन का मशीन लेके आते हैं, खुद कीर्तन करते हैं, पेशेंट के मुंह में तुलसी देते हैं, गंगा जल देते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब रिश्तेदारों को बुलाकर उनके हाथ से भी तुलसी जल देते हैं। ये सारा कार्यक्रम इत्मीनान से होता है, कोई एडमिशन में फर्क नहीं पड़ता है, कोई की नर्सिंग केयर में ICU में जो चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। खाली पेशेंट से एक साइन लेते हैं कि हमें ये मंजूर है, उनके कंसेंट के साथ में उनको 2 घंटे के लिए क्यों ना हो शिफ्ट कर देते हैं। अधिकतर वो रूम फ्री में देते हैं हम 2 घंटे के लिए, कभी कभी लोग पेमेंट भी कर देते हैं उसका, और कितना हुआ पूछते हैं तो थोड़ा सा ले लेते हैं उससे। और 2 घंटा जो आपको एडमिन डिफिकल्टीज है कि ICU में अंदर आना जाना, ICU में कीर्तन कैसे करेंगे, RTO में इतना डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो उनको वहाँ शिफ्ट करके देते हैं। और मरीज कहेगा नहीं नहीं हमको यही रखना है, आप कोशिश करो, तो हम लोग करताल मृदंग वहाँ लेके नहीं जाते, खाली मुँह से कीर्तन करते हैं, कान में जाके बोलते हैं उसके पेशेंट के, और अपना लगातार अगर वो वेंटिलेटर पे है तो उसके मुंह में पानी देते नहीं है, साइड में पानी देते हैं, और तुलसी उसके लिप्स के अंदर डाल देते हैं ताकि वो वेंटिलेटर के बीच में अटक न जाए। ऐसा भी होता है ना, आप मुंह डालेंगे तो वो सक करेगा वेंटिलेटर और जाके उधर यू विल गेट साइनोसिस जस्ट बिकॉज ऑफ तुलसी लिप। तो हम लोग उसको, हमारे सबको लोग को ट्रेनिंग दे के रखा है, वो लिप्स के बीच में ऐसे तुलसी रखते हैं और साइड में एक एक बूंद तुलसी पानी देते रहते हैं, गंगा जल, तुलसी जल, ये माला जो भगवान को अर्पण की गई वो पहनाते हैं, भगवान का चरणाव मंदिर से लेके आते हैं, नीचे से लेके आते हैं, वो उनको पिलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वृंदावन के रज लगाते हैं उनके सर पे, वृंदावन की याद दिलाते हैं, उनकी कहानी बताते हैं उनको। और एक अद्भुत बात होती है, उसको कहते हैं 6 loving exchanges। समझो अभी मेरा कोई रिश्तेदार गुजर रहा है, हाँ, और हम लोग 4-5 लोग बहुत क्लोज है उनके, जो व्यक्ति गुजर रहा है तो उसको बुलाते हैं, कहते हैं कि उनको बता दो कान में जाके, वो शायद बेहोश होगा, कोमा में होगा, तो बोलते हैं उनको जाके बता दो कि अंकल मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, अंकल आपको लगता होगा कुछ गलती आपने की होगी तो हम आपको सब लोग ने माफ़ कर दिया है और आप भी हमारी गलतियों को माफ़ कर दो, अंकल आप जब जाएंगे तो हम आपको मिस करेंगे, अंकल आप जाने के बाद में हम अपना सबका देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करना कि हमारा कैसे होगा, हम अपनी देखभाल खुद अच्छी तरह से करेंगे, या अगर शादी का किसी का चिंता होगा, अंकल आप चिंता मत करना आपकी बेटी की शादी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और बाद में लास्ट में बोलते हैं अंकल अभी जाने का समय हो गया है, आप एकदम विरक्त हो जाओ, अभी आप ज़्यादा आसक्ति मत रखो, हम सब लोग स्वस्थ हैं, अपनी देखभाल करेंगे, आप निश्चिंत होकर भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी उनको मिलने का समय आ गया है, अब उनकी याद करना और इत्मीनान से चले जाना। इसको कहते हैं 6 loving exchanges। वो हर एक व्यक्ति से करवाते हैं, आप आके बोल के जाएंगे, फिर बेटी आके बोल के जाएगी, बहू आके बोल के जाएगी, पुत्र आके बोल के जाएगा, ऐसे कई बार करेंगे। तो मरीज कोमा में होगा लेकिन अंदर वो सुनते रहता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा लेकिन आत्मा उसकी सुन रही है, फिर वो निश्चिंत होकर भगवान के नाम सुनते सुनते उसको विदा कर देते हैं। एक रोने धोने वाला जो इवेंट है उसको आप शांतिपूर्वक ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? यस सर।
एक होता है जनरल केयर, वो जनरल केयर के माध्यम से हम लोग रैपो बनाते हैं।
जैसे अभी मरीज को आके मिलेंगे आप, उनको डाइट का हिस्ट्री लेंगे, उनसे लाइफ स्टाइल हिस्ट्री लेंगे और मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, 2-3 दिन उनको देखेंगे, अच्छा अच्छी तरह से पूछताछ कर रहे हो, स्माइलिंग फेस से उनको पूछ रहे हो, तो वो 2-3 दिन के केयर से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपसे। और हम पूछते हैं कि आपको कुछ बात करनी है प्राइवेटली, तो कुछ लोग फिर खोल देते हैं अपना दिल। अगर स्टाफ की बात रही तो स्टाफ के लिए इस सिस्टम ऐसा है कि देर इज सम सपोज टू बी, जो व्यक्ति हमारे पास काम करने वाले होंगे स्पिरिचुअल केयर में, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होने चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि उनके पास जाके कुछ बोले। हाँ, इफ़ ही इज़ लाइक अ यंग बॉय देन यू विल नॉट फील लाइक गोइंग टू हिम। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए स्पिरिचुअल केयर के अंदर जो लोगों के लिए एक आदर्श व्यवहार वाला व्यक्ति हो, उसका व्यवहार, उसका तौर तरीका जो है ना, वो आपको अट्रैक्ट करने वाला हो, उसका नॉलेज आपको अट्रैक्ट करने वाला हो। तो काफ़ी समय तक तो प्रवचन चलते रहेंगे, प्रार्थनाएं चलती रहेंगी, उत्सव चलते रहेंगे, और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अभी मैं उनसे बात कर सकता हूँ। तो ऑल टेक्स टाइम, अगर कल डिपार्टमेंट शुरू कर दिया तो परसों तुरंत आप नहीं आएंगे, कुछ समय जाएगा उसके अंदर, आपको आप देखेंगे कि क्या ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है मुझे, वो सारा अनुभव आप लेंगे, और कुछ महीने के बाद में आपको लगेगा कि अभी हम इनसे बात कर सकते हैं, और वो व्यक्ति भी उसकी ट्रेनिंग होगी कि वो जाके लोगों से मिलेगा, पूछेगा सर कैसे हो आप, कैसा लगता है आपको, हाउ यू फील टुडे, आप बीमार थे कैसे हो गया, बुखार ठीक हो गया आपका, मम्मी आपकी बीमार थी कैसी थी। जब ऐसी पूछताछ लोग कोई करेंगे ना जाके, तो आपको भी लगेगा कि भाई आदमी को कोई स्वार्थ तो नहीं है इसके अंदर, मुझे आके मेरी इंक्वायरी कर रहा है। उसको कहते हैं देखभाल, पर्सनल केयर। जब वो होगी तब आपको अपने आप लगेगा कि इससे जाके मैं बात करूंगा, अभी मेरे घर में समस्या है, मैं इनसे जाके टाइम लेके बात करूंगा। और वो देखेगा कि आम जगह पे तो बात नहीं हो रही ना, ऑफिस में बंद जगह पर कॉन्फिडेंशियली आपके साथ 1-to-1 बात हो रही है, और वो किसी को बताई नहीं जा रही, तो आपने कुछ बताया बीवी की समस्या है तो मैंने इनको आके बता दी, तो अगली बार आप नहीं आएंगे मेरे साथ बात करने के लिए। तो उनको ट्रेनिंग होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, उनके कान से जो अंदर जाता है ना वो पेट में जाता है, कहीं बाहर नहीं निकलता है, उनके पेट में कई लोगों की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स भरे होते हैं लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलते, हो केवल वो काउंसलर और आपके बीच में रहते हैं। उससे विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, लोगों को ना डिग्निटी की आवश्यकता होती है। मेरी प्राइवेट समस्या में अगर बोलने के पहले 10 बार सोचूंगा कि आप योग्य व्यक्ति हो कि नहीं उसके लिए बताने के लिए, जब मुझे विश्वास होगा कि आप वो योग्य व्यक्ति हो, आप मेरी गुप्तता रखोगे संभाल के, तो मैं आके बताऊंगा। शुरू में हम लोग 8 घंटा सेवा देंगे 9 to 5 के बीच में, फिर जब काम बढ़ेगा तो 2 शिफ्ट में सेवा करेंगे 8 से 10 बजे तक, और जब भी समय आएगा तो 24 आवर्स भी कर सकते हैं एज पर द नीड, लेकिन शुरुआत में 8 घंटा सेवा देते हैं। अभी हमारे अस्पताल में आज 7 AM to 9 PM तक सेवा देते हैं हम लोग, और रात में ऑन कॉल रहता है, कोई डेथ कॉल होगा किसी का क्या होगा तो एक व्यक्ति ऑन कॉल रहता है, उसको फ़ोन आता है और तुरंत वो जाकर रात को डेथ केयर देके आता है। उद्देश्य यह है कि हर एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में गुजरे उसको डेथ केयर मिलना चाहिए, इसलिए ऑन कॉल रखते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का? यस सर। नॉट नेसेसरी, अगर आपके अंदर कोई क्वालिफाइड लोग है तो उसको भी ले सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल केयर के लोग अलग ही होते हैं हमेशा। हाँ, अलग होना चाहिए, क्योंकि कैसा है ना, जैसे भी आप सर्जन हो, खाली ऑपरेशन करेंगे ना, वो सर्जिकल बात ही देखेंगे, कोई पैथोलॉजिस्ट है तो पैथोलॉजी का स्लाइड ही देखेंगे वो, बट यू कैन डू एवरीथिंग एवरी पर्सन ना, आई कैन डू सर्जरी ऑल्सो, मेडिसिन ऑल्सो, एवरीथिंग आई कैन डू। तो उस तरह से डॉक्टर आके अपना काम करके जाएगा, नर्स अपना काम करेंगे, आए भाई पानी देंगे, पॉट देंगे, और बाद में स्पिरिचुअल केयर लोग आएंगे और अपना बातचीत शुरू करेंगे उनसे। पहले वो आइस ब्रेकिंग करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, ऑन द स्पॉट कैसे बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, दो दो रैपोर रखेंगे, इनको दोबारा मिलेंगे, बिस्तर बटे हुए हैं, जैसे नर्स लोगों में बिस्तर बटे होते हैं ना, बेड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, वैसे हमारे सारे जितने बेड्स हॉस्पिटल के हैं वो हमारे 14 नर्सेस, 14 जो लेडीज़ हमारे हैं, जेंट्स एंड लेडीज़, उनमें डिवाइडेड है। उस बिस्तर में जो भी आएगा वो उनकी जिम्मेदारी होगी, उनको मिलते रहेंगे, उनको आज गया डिस्चार्ज हो गया, दूसरा आ गया तो उसको जाके मिलेगी वो और फॉर्म भरेगी उनका, ऐसा है।
मैस्लोज़ हायरार्की सबसे पहले क्या बोलती है, फिजिकल नीड्स,
उसके बाद इमोशनल नीड्स, वेन सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, है ना। आपके लिए, हमारे लिए भी, जब तक ये बेसिक नीड्स पूरी होती नहीं है तब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे होगा? जब मेरे पेट में अन्न नहीं है और मैं भगवान के आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ, कौन सुनेगा उसको? मैं बोला ये गीता ले लो सर, आज दिसंबर का महीना है, गीता जयंती का महीना है, गीता लीजिए। बोले सर खाना खाने को पैसा नहीं है, आप गीता पढ़ने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके खाने का इंतजाम हो गया, उसका बीमारी का इलाज हो गया, उसकी बेटी की शादी हो गई, उसके खेती में अच्छी फसल आई, और फिर आप गीता लेके गए, तो लेगा गीता आप क्यों? तो ये शहर में, गांव में, खेत में, किसान में, सब में एप्लीकेबल है। फर्स्ट थिंग इज बेसिक नीड्स, फुलफिल बेसिक नीड्स, देन द सेल्फ रियलाइजेशन विल बी पॉसिबल। इट्स अ वेरी हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, लेकिन उसके लिए लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फिजिकल नीड्स है उसको एड्रेस करना होगा, किसी की इमोशनल नीड्स है उसको एड्रेस करना होगा, किसी की फाइनेंशियल नीड है उसको एड्रेस करना होगा, तब जाकर आप उनको एक अच्छा इंसान बना सकते हो, उसका जो पोटेंशियल है उसको आप रियलाइज कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, 100% एप्लीकेबल है। पुश देम, इसलिए इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले ट्रस्टीज एंड उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजर्स जो हॉस्पिटल को कंट्रोल करते हैं, उनको ये बात कन्विंस होनी चाहिए। दे इज द टॉप शुड बी कन्विंस फर्स्ट, हमारे हॉस्पिटल में ये सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि हमारे ट्रस्टीज और कोर ग्रुप, जो हमारे कोर ग्रुप है, कोर ऑफ डायरेक्टर्स का, वो सब लोग इसमें कन्विंस्ड हैं, किसी में दुमत नहीं है, किसी में मतभेद नहीं है इसके अंदर, इसलिए वो चल रहा है। अगर ऊपर में कहीं मतभेद है इस बात पर करना है कि नहीं करना है, तो आगे चलेगा ही नहीं वो। तो सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट वो मेन बिजनेस हियर, दे हैव टू बी कन्विंस अबाउट इट, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस। कई जगह पर हमने चालू किया था, एक जगह पर चालू किया था तो एक एचआर मैनेजर कन्विंस था, बहुत एकदम इंस्पायर्ड था, बट हॉस्पिटल ओनर्स वर नॉट सो कन्विंस्ड। जब उस व्यक्ति ने अपना जॉब छोड़ दिया, स्पिरिचुअल केयर ठप हो गया, बंद हो गया, क्योंकि जो दोज पीपल हु मीन बिजनेस, हु हैव कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, हु आर डिसीजन मेकर्स, इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड देन इट विल नेवर गो अहेड। उसके लिए विल पावर चाहिए। स्पिरिचुअल केयर इज नॉट जस्ट रूटीन वर्क, इट इज फ्रॉम द हार्ट। योर नर्सिंग कैन बी रूटीन वर्क, योर एडमिन कैन बी रूटीन वर्क, योर बिलिंग कैन बी रूटीन वर्क, बट स्पिरिचुअल केयर कैनॉट बी रूटीन वर्क, इट हैज टू बी वर्क फ्रॉम हार्ट। उतना मोटिवेशन होना चाहिए, उतना ट्रेनिंग होना चाहिए। एंड ऑलवेज इट इज सेड, वेयर योर मनी इज देयर योर हार्ट इज, है ना। जहाँ आपका दिल होता है वहीं आपका पैसा पहुँचता है, जहाँ दिल नहीं होता है वहाँ पैसा नहीं पहुँचता है आपका। तो आपका दिल अगर होगा तो फिर अपने आप डू द नीडफुल हो जाएगा, नो नीड टू कन्विंस एवरीबडी अगेन एंड अगेन। सो आई एंड हियर, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत समय लिया, रात को ड्यूटी करके आपको मैंने रोक के रखा, माफी चाहता हूँ, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, जोर से ताली बजाइए।